4 ಗಂಟೆಯಾ ಪರಮಾರಾಮ ಕ್ರೋಸಿನ್.
We are at Bhishma Kund.
I'm Bhishma Kund in the room.
From Mahabharata, we find that Bhishma Dev is the illustrious son of Maharaj Santanu and Ganga Devi.
Mahabharata ne malum hai ki Bhishma Dev Ganga Devi aur Santanu Maharaj ke suputra the.
He was disciple of Parasaram in military, Brihaspati in scripture.
Shastra mein Brihaspati ke shishya the aur yuddha mein wo Parasaram ji ke shishya the.
When young, his name was Devavrata.
Jab wo chote the unka naam tha Devavrata.
So the Lord, if it please his father, he wanted to marry Satyavati. He took a great vow to be brahmachari throughout his life.
अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए उत्तर से विवाह करना चाहते थे. उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा.
He would never sit on the throne and would never have any offspring that could inherit.
वो कभी जो है राज सिंहासन पर नहीं बैठते और कभी वो संतान भी नहीं प्राप्त करते.
Therefore, although he was the most worthy person in all of the world to be king, he did not accept that position.
हालांकि वो सबसे योग्य व्यक्ति थे राजा बनने के लिए, अभी भी उन्होंने उस पद को स्वीकार नहीं किया.
Bhishma performed all the difficult tasks of maintaining the kingdom without accepting any of the privileges of the royal order.
उन्होंने सब तकलीफें सहन की राज्य को पालन करने में और जो भी सुविधाएं आते और पद है उसको उन्होंने नहीं स्वीकार किया राजा के.
He was the most loving well-wisher of Yudhisthira, Bhishma, Arjuna, Nakula, Sahadev.
वो जो है युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव के परम हितैषी थे.
His heart was broken unbearably to see the injustices that were inflicted upon the 5 Pandavas.
पांचों पांडवों पर जो अन्याय किया गया ये देखकर उनको बहुत हृदय में ग्लानी होती थी.
His sorrow knew no bounds when he saw the plight of the most exalted Kunti Devi.
और उनके दुख की कभी सीमा नहीं रही जब उन्होंने कुंती महारानी के दुख को देखा.
He endeavored by all righteous means to persuade Dhritarashtra and Duryodhana to be fair and narrow in their dealings with the Pandavas.
उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बहुत प्रयास किया समझाने का कि वो नीति के अनुसार व्यवहार करें.
But even the most learned and powerful man on earth, Bhishma, they would not listen to.
लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली और पढ़े लिखे व्यक्ति भीष्म की बात को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया.
When the great battle of Kurukshetra took place, it was the will of the Lord that Bhishma takes the role of commander in chief.
जब महाभारत की लड़ाई शुरू हुई तो भगवान की इच्छा थी कि भीष्म जो है कौरवों के सेनापति बने.
भीष्म knew for certain that he and his whole army would die because the supreme personality of Godhead, Sri Krishna, was on the opposing side.
वो निश्चित जानते थे कि वो और उनके सब जो कौरव हैं की मृत्यु निश्चित है क्योंकि भगवान दूसरी ओर थे.
Bhishma was undefeatable.
Bhishma को कोई पराजित नहीं कर सकता था.
He had received the boon from his father that he would not die even except by his own sweet will.
उनको अपने पिता से वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा से ही होगी.
Bhishma chastised Duryodhana as well as his associate Karna so much over the years that Karna refused to fight as long as Bhishma is the commander-in-chief.
उन्होंने कर्ण को और दूसरों को इतनी बार डांटा कि कर्ण ने निश्चय किया कि जब तक भीष्म जीवित हैं मैं लड़ाई नहीं करूंगा.
भीष्म वाज सो ग्रेट इन बैटल दैट दुर्योधन वाज कन्विंस्ड दैट विद हिम इन द लीड ऑफ एन आर्मी ही हैड टू विन.
भीष्म इतने महान थे कि दुर्योधन को विश्वास था कि अगर वो नेतृत्व करेंगे तो उनकी विजय सुनिश्चित है.
Is one of the most important and central of the themes of this great literature.
Mahabharat mein Bhishma ki katha jo hai ek bahut hi mahatvapurna bhag hai is katha ka.
During the battle, Bhishma defeated Arjuna.
Ladai ke maidan mein Bhishma ne Arjun ko parajit kar diya.
He had Arjuna in a predicament where if Krishna did not lift a weapon to protect him, Arjuna would be slain.
वो उन्होंने अर्जुन को स्थिति में डाल दिया. अगर भगवान कृष्ण अस्त्र नहीं उठाते तो अर्जुन की मृत्यु सुनिश्चित थी.
Krishna made a promise he would not lift a weapon and would not engage in battle in this war.
कृष्ण ने एक वचन दिया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं लड़ूंगा नहीं इस लड़ाई में.
But Krishna also told Arjuna at Jyotisa, as he was speaking Gita, Kautilya pratijanihi name bhakta pranashyati.
Krishna Bhagavan ne Arjuna ko Jyotisa mein bataya tha, Kautilya pratijanihi name bhakta pranashyati.
You declared me boldly, Arjuna, that my devotee will never perish.
Hey Arjuna, tum ghoshna karo ki mere bhakta kabhi nash nahi hota.
Bhishma wanted to show the world that Krishna is willing to break his own promise to protect the promise of his devotee.
Bhishma ye dikhana chahte the ki Krishna Bhagwan apne vachan ko todne ke liye tayar hai apne bhakton ke liye.
When Arjuna was in a helpless condition at the hands of Bhishma, Lord Sri Krishna, in great anger, lifted a chariot wheel as his weapon.
और बड़े क्रोध जब मैं आकर जब अर्जुन खतरे में थे तो भगवान ने रथ का एक पहिया हाथ में उठाया.
भीष्म
की तरफ दौड़े तेजी से.
भीष्म in a sweet mood of ecstatic love was shooting arrows into the body of Krishna.
और प्रेम की भावना से जो है वो भगवान कृष्ण में तीरों की वर्षा कर रहे थे.
You may ask, what kind of love is this?
कोई बोलेगा ये कैसा प्रेम है.
But our acharyas explain that just as a devotee offers flowers at the lotus feet of the Lord,
acharya batate hain jaise bhakt jo hai bhagwan ke charno mein phool arpan karta hai.
In his chivalrous ras with Krishna as a kshatriya, he was offering his love in the form of arrows.
Unke kshatriya bhavana mein jo hai bhagwan ko wo apna prem teeron ke dwara arpan kar rahe the.
Because those arrows were offered with such pure affection,
aur wo teer jo itne prem ke sath arpan kiye gaye the,
Krishna experienced the love of his devotee in such a way that those arrows gave him pleasure.
Krishna ko aisa anubhav hua ki wo teeron se bhi unko anand anubhav hua.
Prabhupada quotes our previous acharyas that when lovers are in intimate union with each other, sometimes they bite each other.
Prabhupada purva acharya ko batate hain jab koi premi ek dusre se mil rahe hote hain to kabhi prem se kaat dete hain.
Biting feels very nice.
Aur woh bahut anand dene wali hai.
I don't know so much about these things, but this is what I have read.
Mujhe isse kuch zyada maloom nahi hai lekin suna hai.
In the same way, if a stranger bites you, it hurts.
अगर कोई दूसरा अजनबी बात काटेगा तो आपको बहुत दुख लगेगा.
But if lover bites you, it's very nice.
या प्रेमी काटे तो बहुत अच्छा.
Similarly, Bhishma's arrows, although normally it would cause pain, it caused Krishna ecstatic pleasure.
ऐसे भीष्म के तीर वैसे तो बहुत दुख देने वाले हो सकते थे लेकिन कृष्ण को बहुत आनंद मिल रहा था.
But Krishna came with his wheel with great anger to protect his devotee Arjuna and his promise.
Krishna bade gusse se aaye apne bhakton ki raksha karne ke liye.
Bhishma Dev dropped his bows and arrows and fell at the lotus feet of Krishna to surrender.
Bhishma Dev ne apna dhanushya baan chhod diya aur bhagwan ke charno mein samarpit ho gaye.
That was the very perfection of his life.
Ye unke jeevan ki poornata thi.
Later on, by the provoking of Duryodhana, Bhishma fought with all of his force in glory.
बाद में दुर्योधन के प्रोत्साहन करने पे भीष्म जो है और भी ज्यादा पूरी शक्ति के साथ लड़ने लगे.
He told Duryodhana, "I can destroy the entire Pandava army, but I cannot kill the five Pandavas because they are protected by Krishna."
उन्होंने कहा कि मैं पूरे पांडव सेना को मार सकता हूँ लेकिन मैं पांच पांडवों को नहीं मार सकता क्योंकि कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं.
In one day, Bhishma Dev, he was so incredibly enthusiastic to fight that he wiped out practically half the Pandava army.
एक बार इतने उत्साहित थे कि उन्होंने आधी पांडव सेना को एक दिन में ही तमाम नाश कर दिया.
And the five Pandavas, they could not even fight against him.
और पांच पांडव उनके साथ लड़ भी नहीं पाए.
He was unstoppable.
उनको कोई रोक नहीं सकता था.
Just like the cyclone that came to Orissa.
जैसे कि वायुमंडल अभी उड़ीसा में आया.
Even the greatest soldiers, what could they do?
बड़े से बड़े सैनिक भी क्या कर सकते?
Except stand by and watch.
खड़े खड़े तो देख सकते.
This is how Bhishma was destroying the entire army.
इस तरीके से भीष्म ने पूरी सेना का नाश कर रहे थे.
That night the Pandavas were utterly depressed. They knew that the next day the rest of their army is finished.
पांडव बहुत निराश थे. उन्होंने कहा कि अगले दिन पूरी सेना नष्ट हो जाएगी.
Nothing can stop Bhishma.
कोई भी भीष्म को नहीं रोक सकता.
But by the influence of Krishna, late at night they went to Bhishma's private tent to ask his permission to kill him. And how he could be killed.
रात्रि को विष्णु के एक तंबू में गए और उनसे पूछा कि हम कैसे मार सकते हैं और मारने की परमिशन मांगी.
विष्णु became full of bliss to hear this question.
ये प्रश्न सुनकर विष्णु को अति आनंद होने लगा.
He had seen so much of the pain of this world, he wanted to return to the abode of the Lord.
उन्होंने इतना दुख देखा था दुनिया का, वो वापस भगवान के धाम लौटना चाहते थे.
He explained exactly how they could kill him the next day in the battle.
और उन्हें समझाया कि कैसे अगले दिन उनका वध किया जा सकता था.
The next day when he blew his conch shell, it was so loud and so uproarious. Duryodhana felt, yes, he is enlivened because he knows that today he's going to destroy whatever remains of the Pandava army.
इतना जोर से सुनकर बजाया अगले दिन की दुर्योधन को लगा कि अब तो निश्चित है जितनी भी सेना बची है पांडवों की वो नष्ट हो जाएगी.
But in Bhishma's heart, he was effulgent and full of bliss because he knew that that day he would be defeated by the Pandavas.
भीष्म के मन में आनंद इसलिए था, उनको मालूम था कि आज पांडव मेरे को हरा देंगे.
It was here in this place that we are sitting, which is called Bhishmakund, that Sikandi came forward on his request.
और यहाँ पर है, यहाँ पर Bhishmakund यहाँ बैठे हैं कि Sikandi वो आगे आए उनके निवेदन पर.
Bhishma had to retreat from his wrath when she came before him.
जब वो उनके सामने आए तो भीष्म को अपना क्रोध थोड़ा रोकना पड़ा.
Then Bhishma urged Arjuna to shoot his arrows.
फिर अर्जुन से कहा चलाओ मेरे को तीर चलाओ.
Arjuna, under Bhishma's instructions, shot arrows into his body.
और उनकी आज्ञा पर अर्जुन ने उनके शरीर में तीरों को मारना शुरू किया.
But his body was like steel.
उनका शरीर जो है स्टील के समान था.
The arrows were not penetrating.
वो अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे.
Krishna had to order Arjuna,
shoot with all of your strength.
और भीष्म ने अर्जुन से कहा और पूरी शक्ति के साथ तुम चलो.
Arjuna loved Bhishma.
अर्जुन जो है भीष्म से बहुत प्रेम करते हैं.
Besides Krishna, he loved Bhishma more than anyone in the world.
कृष्ण के अलावा भीष्म से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं पूरी दुनिया में.
But knowing it was the will of the Lord, with all of his strength, he shot arrows from the feet to the neck of Bhishma.
भीष्म के चरण कमलों से लेकर गर्दन तक उन्होंने तीरों से चलाया था.
There were so many arrows that you could not even put your finger between any two.
इतने सारे तीर थे कि दो तीरों के बीच में उंगली डालने की जगह नहीं थी.
Bhishma fell to the ground.
भीष्म जमीन पर गिर पड़े.
Each arrow penetrated by going in the front and coming out the back of his body.
और हर एक तीर जो है उनके शरीर में अंदर प्रवेश करता और वहां बाहर निकलता.
He laid in this bed of arrows.
वो तीरों की सैया पर यहां पर लेट गए.
When Bhishma they fell, the entire battle in Kurukshetra stopped.
जब भीष्म देव गिर गए तो पूरा लड़ाई का मैदान में सब लड़ाई बंद हो गया.
It was the 11th day of battle.
ये लड़ाई का 12वां दिन था.
And every soldier on the battlefield came to offer their last respects to Bhishma Dev.
हर एक सैनिक लड़ाई का वो भीष्म को अपना प्रणाम करने के लिए आए.
During that time, he requested a pillow to rest his head.
और उस समय उन्होंने अपना एक तिराना मांगा अपने सिर को आराम देने के लिए.
He wrote in a very nice royal pillow.
दुर्योधन बहुत सुंदर जो राजसी करके वो पिलो
rejected it.
भीष्म ने उसको कहा नहीं सुना.
He told Arjuna, give me proper pillow.
और उसने कहा कि आप मुझे योग्य पिलो दीजिए.
Arjuna shot a series of arrows in the ground in which Bhishma could rest his head against.
अर्जुन ने ऐसे तीरों की मड़ी लगाई जिससे कि अपने सिर को आराम दे सके.
Bhishma, as brahmachari kshatriya, wanted to show no comforts in the battlefield.
मुझे बहुत अगर ब्रह्मचारी क्षत्रिय के रूप में कि लड़ाई के मैदान में ज्यादा सुख सुविधा नहीं होनी चाहिए.
He was very thirsty for water.
उनको बहुत प्यास लगी हुई थी.
But it is one of the most difficult, unbearable conditions in battlefield of where to get water when you're thirsty.
और लड़ाई के मैदान में बहुत मुश्किल चीज है कि पानी प्राप्त हो जब आप प्यासे हैं.
Arjuna, with a shining arrow, shot it into the earth.
अर्जुन ने चमकता हुआ तीर धरती की ओर मारा.
With proper mantra and prayer, from the earth where that arrow touched, the river Ganges came out.
और मंत्र के प्रार्थना के द्वारा जहां पर होती है जमीन को स्पर्श किया वहां गंगा जी का पानी प्रकट हो गया.
And she entered directly into Bhishma Dev's mouth.
और वो सीधे भीष्म देव के मुख में प्रवेश किया.
To quench his thirst.
उनकी प्यास को बुझाने के लिए.
The next day, Dronacharya was made commander of chief of the Kuris.
अगले दिन द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया.
And Karna was willing to enter into the battle.
और कर्ण फिर युद्ध में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए.
After 18 days, the Kuru army was destroyed.
18 din ke baad Kuru ki puri sena nasht ho gayi.
Pandavas were victorious.
Pandav vijay ho gaye.
Krishna brought Pandavas back to Hastinapur.
Aur Krishna bhagwan Pandavon ko wapas Hastinapur lekar aaye.
Yudhishthira was duly coronated as king.
Aur Yudhishthira Maharaj ko rajyabhishek kiya gaya.
However, due to his humble Vaishnav qualities, he felt very guilty. And so many people died, and he blamed himself.
नम्र वैष्णव होने के नाते वो अपने आप को दोषी ठहराने लगे. उन्हें इतने लोग मर गए वो मेरे कारण.
Krishna wanted the glories of Bhishma to be known to the world.
कृष्ण भगवान चाहते थे कि भीष्म के जो गुण हैं पूरी दुनिया को पता चले.
So he brought the Pandavas back to this place.
वो पांडवों को इस स्थान पर वापस लेकर आए.
Bhishma Dev, he would not die without the darshan of his worshipable Lord Shri Krishna before him.
Bhishma Dev apne poojaniya swami bhagwan krishna ke bina is sharir chhodne ke taiyar nahi the.
It was lying here on a bed of arrows that Bhishma Dev spoke the shanti parva of Mahabharat to Maharaj Yudhishthira.
Aur yahan par teeron ki shaya par Bhishma Dev ne Mahabharat ka shanti parva bola.
But when he saw the sun entering into the northern hemisphere, he understood it is an auspicious time
to depart from this world.
जब उन्होंने देखा कि सूर्य जो उत्तर की ओर प्रवेश कर गया है मकर संक्रांति के समय तब उन्होंने यह अच्छा समय है शनि स्वामी का.
He fixed his eyes on the beautiful form of Shri Krishna.
और भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप पर उन्होंने अपनी आंखें केंद्रित की.
He offers beautiful prayers of love and glorification of Lord Krishna.
भगवान कृष्ण का गुणगान करते हुए प्रार्थना स्तुति करने लगे.
His mind, his senses, his heart, and his soul were fixed in one-pointed devotion on the beautiful form of Krishna.
उनके मन इंद्रियां सब कुछ केंद्रित थे भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप के ऊपर.
It was in that state that Bhishma Dev departed from this world.
और इस अवस्था में भीष्म देव इस धरती से आगे चले गए.
And returned to the spiritual world.
और आध्यात्मिक धाम में प्रवेश किया उन्होंने.
When Sri Chaitanya Mahaprabhu was living in Puri, Thakur Haridas disappeared from this world by his own will, beholding the beautiful moon-like face of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में रह रहे थे अपनी इच्छा से हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के रूप को देखते हुए त्याग किया.
Seeing this, Sri Gauranga Mahaprabhu and all of his devotees immediately remembered the most glorious passage of Bhishma Dev.
और ये देखने पर चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों ने भीष्म देव के प्रणाम को उनको स्मरण कराया.
भीष्म देव इज वन ऑफ द 12 ग्रेट महाजन्स.
भीष्म देव 12 महाजन में से एक है.
The topmost authorities on the knowledge and practice of bhakti.
ये सबसे बड़े अधिकारी हैं कि भक्ति के ज्ञान और अभ्यास के बारे में.
Mahajano yena gata satanta. The path of perfection is to follow in the footsteps of such great Mahajana.
Aise Mahajano ke padachino ka anugaman karna hi bhakti ka marg hai.
In the first canto of Srimad Bhagavatam, Sri Suta Goswami describes very elaborately an entire chapter on the passing of Bhishma Dev.
श्रीमद भागवत के प्रथम स्कंध में सुत गोस्वामी पूरा अध्याय देते हैं भीष्म देव के प्रणाम के बारे में.
श्रीमद भागवतम इज द स्पॉटलेस पुराण.
श्रीमद भागवत अमल पुराण है.
इट डिस्क्राइब्स ओनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री व्हिच रिवील प्योर अनलॉयड डिवोशन.
उन घटनाओं का वर्णन करते हैं जो कि शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं.
That Sri Bhishma Dev revealed his pure unalloyed devotion to Sri Krishna.
यहाँ पर भीष्म कुंड में ही था उन्होंने अपना शुद्ध भक्ति कृष्ण के प्रति प्रकट किया.
And he taught us how we can leave this world completely fixed in body, mind, and words and life in absorption in the remembrance of Krishna.
उन्होंने दिखाया कैसे हम अपनी शरीर का त्याग कर सकते हैं अपने मन को प्राणी को भगवान के चरणों में केंद्रित करते हुए.
The water of this kund originated from the arrow of Arjuna.
यहाँ का जो पानी है कुंड का वो अर्जुन के तीर से प्रकट हुआ.
It is our very great fortune that we could come here and take bath in Arjuna in this kund.
यह हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर आए और स्नान करने आचमन करने इस कुंड में.
Next we will circumambulate Bhishma Kund.
हम परिक्रमा करेंगे भीष्म कुंड की.
Remembering with tears in our eyes and gratitude in our heart the glorious life and example of Sri Bhishma Dev.
और आंखों में अश्रु और हृदय में कृतज्ञता की भावना से हम भीष्म के यशस्वी जीवन को स्मरण करेंगे.
We will pass this very exalted murti of Sri Hanuman Ji.
और हम यहाँ पर हनुमान जी की बड़ी विशाल मूर्ति से आगे गुजरेंगे.
And temple which commemorates the passing of Bhishma in the presence of Krishna and five Pandavas.
और यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पर भीष्म देव और पांडवों का मंदिर जहाँ पर उसके स्मरण में बनाया गया.
Thank you very much.
बहुत बहुत धन्यवाद.
Please let us pray to Sri Bhishma Dev that he may bless us with sincere determination and willingness to be an instrument of the Lord's mercy in whatever the Lord, in whatever way the Lord may want to use us.
हमें लगता है कि प्रार्थना करने के लिए हमें दृढ़ निश्चय है जिसमें भगवान की कृपा के एक निमित्त मात्र बन सके जिस तरीके से भगवान हमको उपयोग करना
चाहिए Remember Krishna throughout our life.
हम पूरे जीवन भर कृष्ण का स्मरण करें
And fix our heart energy in the remembrance of Krishna at the time of the inevitable departure from this body.
और जब शरीर छोड़ने का समय है तो समय के मन को भगवान कृष्ण के चरणों में केंद्रित कर सके
आचमन ले तीन बूंद पानी फिर सन्निहित सरोवर की ओर चले जिन लोगों को स्नान करना है वो स्नान कर सकते हैं वहाँ पर जैसे वो आश्रम से पास में ही है वहाँ पर हरे कृष्ण